यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 27 नवंबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। कोविड-19 संकट का महिलाओं पर बहुत ज्यादा असर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को हमेशा के लिए खत्म करने की पुकार। भारत में लड़की के जन्म पर खुशियां मनाने की नई बयार। लड़कियों के समानता के अधिकार से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। कोविड-19 के इलाज में वैक्सीनों की होगी अहम भूमिका। अंधेरी सुरंग के सिरे पर नजर आई रोशनी। फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में इसराइली हमलों और नाकेबंदी से 10 साल में हुआ लगभग $17 अरब का नुकसान। और संयुक्त राष्ट्र व भारत के संबंध दर्शाते डाक टिकटों की एक वर्चुअल प्रदर्शनी। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आइए। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने तमाम देशों की सरकारों से लिंग आधारित हिंसा को हमेशा के लिए खत्म करने के प्रयास दोगुने करने का आह्वान किया है। बुधवार को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ये आह्वान किया गया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस दिवस पर दिए अपने संदेश में समाधान तलाश करने में महिलाओं के नेतृत्व को प्राथमिकता दिए जाने और इस संघर्ष में और ज्यादा पुरुषों को साथ लेकर चलने की अहमियत पर जोर दिया। यूएन प्रमुख ने कहा,
The COVID-19 crisis has further exposed violence against women and girls as a global emergency requiring urgent action. In particular, domestic violence have dramatically escalated around the world. Millions of women are pushed further into poverty by the COVID-19 crisis.
कोविड-19 संकट ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को और भी साफ तौर पर उजागर करके रख दिया है, जिससे निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। दुनिया भर में खासतौर से घरेलू हिंसा के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। कोविड-19 संकट ने लाखों अतिरिक्त महिलाओं को गरीबी में धकेल दिया है और उनके खिलाफ अनेक तरह की हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। वैश्विक समुदाय को महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ों और अनुभवों को सुनना होगा और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना होगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने अप्रैल 2020 में की गई अपनी वो पुकार दोहराई, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लिंग आधारित हिंसा की छाया महामारी का खात्मा करने के लिए काम करने का आग्रह किया था। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 दिन का सक्रियता अभियान भी चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आईफेड की भारत में तेजस्विनी परियोजना के तहत आयोजित कन्या नामकरण समारोह कन्या भ्रूण हत्या को कम करने और भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश में आईफेड द्वारा वित्त पोषित ये परियोजना लड़की के जन्म के इर्द गिर्द नकारात्मक धारणाओं को उलटने की कोशिश कर रही है। सुनिए अंशु शर्मा की एक रिपोर्ट।
भारत में महिलाएं थाली बजाकर उत्सव मनाती हैं। शिशु का जन्म भी एक ऐसा ही विशेष अवसर है, लेकिन इस बार ये समारोह कुछ अलग है। इस समारोह में एक बच्ची के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं।
मैं रूपाली पांडुरानंद पवार हूँ। मैं बेलगांव करजत में रहती हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैंने दूसरी बार एक लड़की को जन्म दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार के सदस्य भी बहुत खुश हैं। वे निराश नहीं हुए और उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। हमारे गांव में ग्राम सभा ने भी मेरी बच्ची के जन्म का जश्न मनाया। ये थे बेलगांव महाराष्ट्र के निवासी रूपाली पांडुरानंद पवार के शब्द। परंपरागत रूप से इन समारोहों में लड़कों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, लड़कियों के जन्म पर नहीं। महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम इफेड द्वारा वित्त पोषित तेजस्विनी परियोजना ने आयोजित किया था। इस परियोजना ने हजारों महिलाओं को आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता दी है। भारत में जन्म से पहले लड़का या लड़की के चयन पर प्रतिबंध होने और कन्या भ्रूण हत्या पर काबू के बावजूद अनेक हिस्सों में अब भी बच्ची के जन्म पर निराशा देखी जाती है। इस कार्यक्रम के जरिए परिवारों को लड़कियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गांव के लोगों से मिठाई और नारियल के उपहार पाकर रूपाली बहुत खुश है कि उसकी बेटी को अब एक बेटे की तरह ही समान दर्जा मिलेगा। बेलगांव महाराष्ट्र की निवासी रूपाली पांडुरानंद पवार कहती हैं, मुझे लगता है कि जब भी कोई लड़की जन्म ले तो हर कोई खुश हो। हम बालिकाओं के उत्सव कार्यक्रम आयोजित करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। समाज में उसकी हैसियत बराबर होनी चाहिए, यही समाज के लिए अच्छा होगा। ये थे बेलगांव महाराष्ट्र के निवासी रूपाली पांडुरानंद पवार के शब्द।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडिनम गेब्रेसस ने कहा है कि COVID-19 के खिलाफ वैक्सीन की खोज और जांच पड़ताल के साथ ही अन्य प्रामाणिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय भी अपनाए जा रहे हैं, मगर अब इस बारे में कुछ ठोस उम्मीद जागी है कि स्वास्थ्य महामारी का खात्मा करने में वैक्सीनों की असरदार भूमिका होगी। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक ने कहा कि वैक्सीनों के परीक्षणों में हाल के समय में मिले सकारात्मक समाचारों के साथ ही इस लंबी और अंधेरी सुरंग में कुछ रोशनी नजर आने लगी है जो लगातार और ज्यादा उज्ज्वल हो रही है। WHO के प्रमुख ने कहा कि इतिहास में इतनी तेजी से कोई वैक्सीन विकसित नहीं हुई और वैज्ञानिक समुदाय ने वैक्सीन विकसित करने में नए मानक स्थापित किए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वैक्सीन की उपलब्धता सभी के लिए सुनिश्चित करने के वास्ते नए मानक स्थापित करने होंगे। जिस तात्कालिकता व शीघ्रता के साथ वैक्सीन विकसित की जा रही है, उसी तात्कालिकता, शीघ्रता व निष्पक्षता के साथ ये वैक्सीन सभी लोगों को मुहैया कराई जानी चाहिए। WHO प्रमुख ने आगाह करने के अंदाज में कहा कि निर्धनतम और बहुत नाजुक परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों के इन वैक्सीनों की पहुंच से दूर रह जाने का बहुत खतरा है। कहीं वैक्सीन के जरिए रोग प्रतिरोधी क्षमता हासिल करने के संघर्ष में वो भीड़ में कुचल ना दिए जाएं। इस बीच अफ्रीका के लिए WHO की क्षेत्रीय निदेशक मैट्शी दीसो मुएती ने कहा है कि अफ्रीका क्षेत्र अब भी टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी से बहुत दूर है। उन्होंने अफ्रीका क्षेत्र में COVID-19 महामारी के खिलाफ कामयाब टीकाकरण की तैयारी के लिए मजबूत योजना व तैयारी की महत्ता पर खास जोर दिया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग द्वारा डिस्कवरी चैनल की भागीदारी और दिया मिर्जा व सोनू सूद की मेजबानी में तीन हिस्सों वाली एक श्रृंखला भारत के महावीर शुरू की गई है, जिसमें COVID-19 के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी सीमाओं से परे जाकर काम करने वाले देश भर के 12 चैंपियन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस सीरीज से जुड़ी कुछ जानकारी और वीडियो सामग्री हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में सैन्य गतिविधियों और नाकेबंदी के कारण वर्ष 2007 से 2018 के बीच लगभग 16 अरब 70 करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। UN व्यापार और विकास संगठन UNCTAD की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल द्वारा गाजा की नाकाबंदी के कारण सामान्य हालात की तुलना में गरीबी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। UN महासभा के लिए तैयार की गई UNCTAD की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर है। गाजा में इसराइल के सैन्य हमलों के कारण जो नुकसान हुआ है वो इस फिलिस्तीनी क्षेत्र के 2018 में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 गुना ज्यादा है। दूसरे शब्दों में फिलिस्तीनी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 107%। गाजा में वर्ष 2007 में गरीबी की दर 40% थी और अगर इसराइल के लंबे सैन्य अभियानों के जरिए भारी तबाही नहीं हुई होती तो इस गरीबी में वर्ष 2017 तक 15% की कमी आ सकती थी, मगर इसके उलट गरीबी की दर बढ़कर 56% हो गई। असमानता की गहराई भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा विकट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों के गरीबी रेखा से दूर या नज़दीक होने के पैमाने के तहत गरीबी की खाई वर्ष 2017 में 20% थी और अगर इसराइली सैन्य अभियान नहीं चलाए जाते तो ये दर 4.2% होती। फिलिस्तीनी लोगों की सहायता के लिए अंकटाड के संयोजक महमूद अल खफीफ ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि गाजा की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2007 से 2017 के बीच 5% की बढ़ोतरी हुई, जो कि प्रतिवर्ष केवल 0.5% से भी कम रही। कुल फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था में गाजा का हिस्सा भी 37% से लगभग आधा घटकर 18% पर रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने जिनीवा में हुए सम्मेलन में अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के लिए वित्तीय और राजनीतिक समर्थन व सहायता का संकल्प व्यक्त किया है। मंगलवार को संपन्न हुए इस अफगानिस्तान सम्मेलन में ये भी उम्मीद नजर आई कि एक टिकाऊ युद्ध विराम से देश को दशकों के संघर्ष की तबाही से निकलकर पुनर्निर्माण करने और घावों पर मरहम लगाने में मदद मिलेगी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सहायता मिशन की प्रमुख डेबोरा लियोंस ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि ये दिन अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक शुभ घड़ी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को स्पष्ट संदेश देने के लिए दुनिया एक मंच पर आ गई है और वो संदेश है कि हम आपके साथ हैं। डेबोरा लियोंस ने कहा कि जिनीवा में संपन्न हुए अफगान सम्मेलन में व्यक्त किए गए वित्तीय सहायता के संकल्पों में अरबों डॉलर की रकम इकट्ठा होने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन ये वित्तीय सहायता मुफ्त में नहीं मिलेगी। दानदाताओं की अपेक्षा ये है कि ये रकम सही तरीके से खर्च की जाएगी और सरकार को ये रकम खर्च करने के बारे में जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही ये भी अपेक्षा व्यक्त की गई है कि देश अतीत की कामयाबियों से फायदा उठाएगा और प्रशासन की संस्थाओं को मजबूत किया जाता रहेगा, साथ ही मानवाधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। फिनलैंड के विदेश मामलों के मंत्री ने कहा कि 66 देशों की सरकारों और 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस सम्मेलन में शिरकत की, ज्यादातर ने कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन माध्यमों से। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से फिनलैंड और अफगानिस्तान ने संयुक्त रूप से किया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत और संयुक्त राष्ट्र के डाक टिकटों की एक वर्चुअल प्रदर्शनी हाल ही में शुरू की गई। इस प्रदर्शनी में संयुक्त राष्ट्र और भारत से संबंधित विषयों पर भारतीय डाक विभाग और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन द्वारा जारी 53 डाक टिकटों के इतिहास और इन्हें जारी किए जाने की पृष्ठभूमि दिलचस्प ढंग से पेश की गई है। इसी विषय पर सुनिए अंशु शर्मा की ये रिपोर्ट।
डाक टिकट जारी करने का ये सिलसिला शुरू हुआ 1954 में संयुक्त राष्ट्र दिवस पर, जब भारतीय डाक विभाग ने देश में पवित्र माने जाने वाले कमल के फूल को चित्रित करके संयुक्त राष्ट्र के सम्मान में पहला डाक टिकट जारी किया था। फिर 1962 में मलेरिया खत्म करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मलेरिया उन्मूलन संबंधित डाक टिकट जारी किया गया। 24 अक्टूबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगांठ पर तथा 26 जून 1995 को संगठन के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए और वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हाल ही में जारी डाक टिकट कुछ प्रमुख डाक टिकट हैं जो यूएन और भारत के आपसी संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र भी भारत संबंधी अनेक विषयों पर डाक टिकट जारी करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन यानी यूएनपीए ने हाल ही में 17 फरवरी 2020 को विलुप्त प्राय प्रवासियों पर आधारित डाक टिकटों का एक सेट जारी किया था, लेकिन सबसे उल्लेखनीय था यूएनपीए द्वारा वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर गांधी जी पर जारी एक स्टैंप, जिस पर एक प्रतिष्ठित पेंटिंग से लिया गया गांधी जी का एक चित्र अंकित था। ये पहली बार था जब भारत से संबंधित इस तरह का कोई स्टैम्प जारी किया गया था। दिलचस्प बात यह भी थी कि स्टैम्प पर गांधी जी का जो चित्र था उसे मशहूर चित्रकार डॉक्टर फर्डी पचेको ने बनाया था, जो बॉक्सर मोहम्मद अली के चिकित्सक भी रहे हैं। उस समय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इसके पीछे सोच क्या थी।
कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड डिजाइन ऑफ द इवेंट हैड अ टाइम कॉन्टेक्स्ट।
घटना की अवधारणा और समय का एक संदर्भ था। अगर आपको याद हो तो वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही 50 वर्ष पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर भारत आए थे। तो वर्ष 2009 में महात्मा गांधी की 140वीं जयंती भी थी और साथ ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भारत यात्रा की 50वीं सालगिरह भी।
ईयर सेलिब्रेशन ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स विजिट टू इंडिया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि और भारत के वर्तमान आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक और डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले 2016 में मशहूर भारतीय संगीतकार MS सुब्बलक्ष्मी के UN मुख्यालय में कर्नाटक संगीत प्रदर्शन के 50 वर्ष पूरे होने पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के स्थायी प्रतिनिधि पद से हाल ही में रिटायर हुए सैयद अकबरुद्दीन उस समय की बात करते हुए यादों की दुनिया में खो जाते हैं।
That year was important for us for two reasons. One, it was the 50th anniversary.
वो वर्ष हमारे लिए दो कारणों से अहम था। एक तो ये कि UN दिवस पर भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए संगीत कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ थी। वो एक ऐसी कलाकार थी जिन्हें 1966 में संयुक्त राष्ट्र में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने वहां अपना गायन प्रस्तुत किया था। साथ ही ये उनकी जन्म शताब्दी का साल भी था, इसलिए हमने सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा खास कर सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र और इस महान कलाकार के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि हो। फिर हमने संयुक्त राष्ट्र के डाक विभाग से संपर्क किया और वो तुरंत तैयार हो गए।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे एम्बेसडर सैयद अकबरुद्दीन के शब्द। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए UNPA ने डाक टिकट जारी किए जिसमें UN मुख्यालय की तस्वीर के साथ साथ ओम शब्द व विभिन्न योगासन चित्रित हैं। उस दौरान भारतीय मिशन में स्थायी प्रतिनिधि रहे अशोक मुखर्जी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को याद करके आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं।
The organization of the first International Day of Yoga in the United Nations was very special.
संयुक्त राष्ट्र में प्रथम योग दिवस का आयोजन बहुत खास था। हमने ये किया कि इसे संयुक्त राष्ट्र के हॉल से बाहर ले आए और खुले स्थान का उपयोग किया। खुले स्थान पर आयोजन बहुत अच्छा लग रहा था। उससे पहले रात में हुई बारिश थम गई थी और सूर्य चमकने लगा था। ऐसे मौसम में हम संयुक्त राष्ट्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे। इसमें महासचिव और उनकी पत्नी भी शामिल हुए। इसके बाद हम सभी लोग मैनहट्टन इलाके में टाइम्स स्क्वायर गए हजारों लोगों के बीच में, जिन्होंने हमारा अभिवादन किया और इसे टाइम्स स्क्वायर की मुख्य स्क्रीन पर भी दिखाया गया। ये एक ऐसी स्मृति है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी।
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के स्थायी प्रतिनिधि रहे एम्बेसडर अशोक मुखर्जी के शब्द। दीपावली के भारतीय त्योहार को वैश्विक मान्यता देते हुए 19 अक्टूबर 2018 को दीपावली पर भी एक डाक टिकट जारी किया गया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे एम्बेसडर सैयद अकबरुद्दीन बताते हैं।
There was a stamp which was brought out.
ये स्टैम्प एक सिद्धांत की वैश्विक समझ से जुड़ गया जो अनेक सभ्यताओं का मूल है। दीपावली त्योहार अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई का प्रतीक है जो संयुक्त राष्ट्र में निरंतर चर्चा का विषय रहता है। ये अंधेरे पर प्रकाश की जीत दर्शाता है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र निरंतर प्रयासरत रहता है। इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र की थीम में बिल्कुल फिट बैठता है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र की इमारत दीपावली के रंगों व प्रकाश से चमक उठी थी। इसे और दीर्घकालिक आधार पर मनाने का ये एक उचित तरीका था।
And it was a proper way to commemorate this on a long-term basis.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे एम्बेसडर सैयद अकबरुद्दीन के शब्द। लेकिन सबसे चर्चित रहा 8 मार्च 2018 को लैंगिक समानता पर आधारित UN विमेन का मशहूर अभियान ही फॉर शी। इस विषय पर भी भारत और UN ने मिलकर एक साझा डाक टिकट जारी किया था। उस दौरान न्यूयॉर्क में UN विमेन की उप कार्यकारी निदेशक रही लक्ष्मी पुरी
इस डाक टिकट के जारी होने के पीछे की दिलचस्प कहानी बताते हुए डाक टिकट की अहमियत बयां करती हैं।
एक शक्तिशाली संदेश देने और लोगों की कल्पना पर अपनी पकड़ बनाने के लिए स्टैम्प जारी करना इस अभियान का एक दिलचस्प पहलू था। इसलिए हमने इस स्टैम्प को डिज़ाइन करने और लॉन्च करने के लिए UPA, इंडिया पोस्ट और UN Women के साथ साझेदारी की। मैं और UN Women डिज़ाइन चुनने में शामिल थे और मेरा ख्याल है कि इस डिज़ाइन में अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है वो दिखाई गई है। स्टैम्प जारी करना किसी विशेष व्यक्ति या मुद्दे को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का निस्संदेह ही एक महत्वपूर्ण जरिया है और दुनिया भर के अनगिनत स्टैम्प प्रेमियों के लिए हमारे समाज और सभ्यता के विरासत को इतिहास का हिस्सा बनाने का एक साधन भी।
UN दिवस पर भारत और संयुक्त राष्ट्र डाक इतिहास नामक वर्चुअल प्रदर्शनी के जरिए विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और बहुपक्षीय संगठन के बीच के संबंधों के इतिहास की झलक पेश की गई है। ये प्रदर्शनी आप UN इंडिया की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।